हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर मेहर ठाकुर को जैसे ही अरमान और अपने छोटे भाई अरहम के बारे में पता चला, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही उसे ये भी पता चल चुका था कि राजवीर सिंघानिया की बातों में आकर जिन शेयर्स पर उसने अरमान ठाकुर के साइन लिए थे, वे सभी जोया के नाम हो चुके थे। और जिस कंपनी पर वे लोग नाज करते थे, जिस कंपनी को नंबर वन बनाने में मेहर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से जोया अबीर सिंह राठौर की हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उस कंपनी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए मेहर किसी के साथ सोने से भी पीछे नहीं हटी थी। मेहर का गुस्से से बुरा हाल था। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई जोया से मिलने राजा चांदनी के होटल की ओर रवाना हो गई थी। जोया को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जिस दिन मेहर को सच्चाई पता चलेगी, वो उससे मिलने जरूर आएगी। इसलिए वो मिलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने बॉडीगार्ड से कह दिया था, अगर मेहर मुझसे मिलने आए तो उसे अंदर आने दो, उसे रोको मत, क्योंकि जोया अबीर सिंह राठौर खुद मेहर ठाकुर से मिलना चाहती थी। मेहर जल्दी ही जोया के सामने खड़ी हो गई। मेहर को देखकर जोया अपनी कुर्सी से नहीं उठी, बल्कि टांग पर टांग रखे उसी स्टाइल में बैठी रही। मेहर ने जोया के सामने बैठने की हिम्मत नहीं की, वो खड़े खड़े ही बोलने लगी, आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्यों किया तुमने ये सब? तुमने एक पल में हम लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा बंगला नीलाम होने जा रहा है। इतना ही नहीं, तुमने हमारी कंपनी भी अपने नाम करवा ली है। क्यों किया तुमने इतना बड़ा धोखा? और जब इन सब पर भी तुम्हारा जी नहीं भरा, तो तुमने मेरे भाई को हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया और साथ ही मेरे एक भाई को जेल में भिजवा दिया। आखिर क्यों? क्या इतनी नफरत थी तुम्हारे अंदर कि तुमने अपने साथ हुए जुल्मों का इस तरह से बदला लिया? जोया मेहर की एक एक बात सुन रही थी। मेहर काफी चबा चबा कर गुस्से से बोल रही थी और फिर अंत में रोने लगी। अगर ज्यादती तुम्हारे साथ हुई थी तो ज्यादती मेरे साथ भी हुई थी। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप और भाई ने मेरे साथ क्या किया था? हाँ, उसी का बदला मेरे भाइयों ने तुमसे लिया था, तो हिसाब बराबर हो गया था ना? तो तुम्हें इस तरह से ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम भूल गई मैंने बचपन में तुम्हें किस तरह से माँ बनकर पाला था? मेहर गुस्से से बोली। तब जोया उठी, मेहर की ओर देखते हुए बोली, वाह मेहर ठाकुर वाह, आपने तो एक पल में सब कुछ कितनी आसानी से कह दिया। और जब आज आप खुद बर्बाद हो चुकी हैं, तो आप मुझे यहाँ रिश्ते नातों का वास्ता देने आई हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे इस तरह की बातें करेंगी तो मैं तरस खाकर आपको सब कुछ लौटा दूंगी? नहीं मेहर ठाकुर, ये आपकी गलत फहमी है। हाँ, मैं मानती हूँ आपने मुझ पर एहसान किए थे, और उन एहसानों को आपने मेरे होने वाले पति के साथ मेरी शादी की रात ही सोकर खत्म कर लिया था। जैसे ही जोया ने ये कहा, मेहर उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी, साथ ही कुछ शर्मिंदा सी हो गई। उसे वो रात याद आ गई जब उसने जोया को धोखा देकर राजवीर सिंघानिया के साथ एक रात गुजारी थी। फिर जोया ने आगे कहा, तुम जानती हो तुमने राजवीर सिंघानिया के साथ रात गुजारी थी। मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अच्छा ही हुआ कि मेरी उस जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं हुई, और वक्त रहते राजवीर की सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। और क्या कहा तुमने, तुम्हारे साथ भी ज्यादती हुई है? हाँ, मैं मानती हूँ मेरे बाप और भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन उनके किए की सजा तो तुम्हारे भाइयों ने मेरी ही आंखों के सामने उनकी बहरहमी से जान लेकर दे दी थी। मेरी ही आंखों के सामने मेरे भाई की गर्दन काटी थी तुम्हारे भाई ने। और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मेरी नजरों में गलत हो। मैंने तो किसी की जान नहीं ली। हाँ, मैंने केवल तुम्हारे एक भाई को हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया है और एक को जेल में भेज दिया है। मैंने उसकी जान तो नहीं ली ना। और रही बात तुम्हारे भाई अरहम ठाकुर की, तो मैंने उसे फांसी की सजा नहीं दिलाई है, मैंने उसे सिर्फ 25 साल की सजा दिलाई है। वो सिर्फ अपनी पूरी जवानी जेल में बिताएगा, उसके बाद वो रिहा हो जाएगा। तुम्हारे किए हुए एहसानों का ही बदला चुकाया है मैंने, जो मैंने उन्हें मौत नहीं दी। और रही बात तुम्हारी, तो राजवीर तो तुमसे तलाक ले ही चुका है, और मैं तुम्हें ना तो कहीं जेल में भेज रही हूँ, ना तुम्हें किसी तरह की कोई सजा दे रही हूँ, क्योंकि जो लड़की अपने मतलब के लिए हर दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाए, वो मेरी नजरों में किसी भी लायक नहीं है, सजा के लायक भी नहीं। इसलिए मैंने तुम पर तुम्हारे अपाहिज भाई की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं चाहती हूँ तुम अपने अपाहिज भाई को मरता हुआ देखो, और दिन प्रतिदिन वो अपाहिजों की जिंदगी कैसे गुजारता है वो देखो, और सिर्फ महसूस करो। और बिना पैसों के, बिना लग्जरी लाइफ के, तुम लोग अपनी आगे की जिंदगी कहाँ और कैसे गुजारोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग जिंदगी की कठिनाइयों को अपनी आंखों से देखो। और एक और बात मेहर ठाकुर, कान खोलकर सुन लो, आज तो तुम जोया अबीर सिंह राठौर से मिलने आई हो, लेकिन आगे से तुम कभी मुझसे नहीं मिल पाओगी, क्योंकि मेरा यहाँ आने का मकसद ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इसलिए मैं आज शाम को ही यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा जरूर देना चाहूंगी। ऐसा कहकर जोया ने अपने पास की ड्रॉअर से कुछ कागज निकालकर मेहर की ओर फेंक दिए। मेहर में कांपते हाथों से उन कागजों को ले लिया। जैसे ही उसने कागजों को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उनमें एक छोटी सी दुकान और एक मामूली से मकान के कागजात थे, जो जोया ने मेहर और अरमान के लिए खरीदे थे। उस दुकान पर मेहर चाय वगैरह बेचकर अरमान का ध्यान रख सकती थी। उनको देखकर मेहर की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। वो गुस्से से जोया की ओर देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि गुस्से से उसके सामने काम नहीं बनने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से रो रोकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और जोया के पैरों में बैठकर नाक रगड़ने लगी, बुरी तरह से रोने लगी और अपने भाइयों की तरफ से और अपने किए की जोया से माफी मांगने लगी। लेकिन जोया ने उसे दूर कर दिया और कहा, मेरे पास इन मगरमच्छ के आंसुओं के लिए समय नहीं है। तुम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी जोया नाम की लड़की को इस दुनिया से मिटाने की, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रही, शायद इसीलिए कि शायद ऊपर वाले ने मेरे हाथों तुम सब लोगों का कल्याण लिखा हुआ था। जैसे ही जोया ने ये कहा, मेहर उसे हैरत से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब जोया से क्या कहे। मेहर को एक एक करके जोया के साथ जो कुछ भी उसने किया था वो याद आने लगा। किस तरह से उसने जोया की शादी वाले दिन ही उसे अगवा करवा दिया था और उसके होने वाले पति के साथ रात गुजारी थी। इतना ही नहीं, जोया के जाने के बाद उसने उसके पति से ही शादी कर ली थी और हमेशा यही सोचा करती थी कि वो उसकी जिंदगी में कभी वापस ना आए। मेहर को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगी कि काश वक्त रहते उसने सब कुछ ठीक कर दिया होता तो उसे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अरमान अपाहिज हो चुका था और हम जेल में जा चुका था और मेहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। बिजनेस वुमन बन चुकी मेहर, आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली मेहर, अचानक मुंह के बल जमीन पर गिर गई थी। अब वो एक मामूली सी दुकान ढाबा चलाने वाली औरत से ज्यादा कुछ नहीं थी।
एक बार तो जोया ने सोचा था कि वो उसे कुछ नहीं देगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जोया के मन में मेहर की कुछ यादें बसी हुई थी, जब मेहर जोया का बचपन में ध्यान रखा करती थी और सहेली बनकर उसके साथ खेला करती थी, उसे स्कूल से लाया ले जाया करती थी। उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए जोया ने मेहर की जिंदगी की कठिनाइयों को थोड़ा सा कम कर दिया। उसने उसे छोटा मोटा रोजगार दे दिया, साथ ही रहने के लिए एक छत दे दी ताकि वो अपने और अपने भाई के साथ दो वक्त का खाना कमाकर खा सके। वहीं दूसरी ओर राजवीर सिंघानिया को जैसे ही ये पता चला कि जोया ने उसे धोखा दिया था और उसने जोया के चक्कर में आकर अरमान ठाकुर की कंपनी के साथ साथ अपने सभी शेयर्स भी जोया के नाम कर दिए थे, तो उसका गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो आज ही जोया की जान ले लेगा। जोया को उसे इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसे अपनी गाँव वाली प्रॉपर्टी पर बहुत घमंड था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके गाँव की सारी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी थी क्योंकि उसके अंकल शमशेर सिंह जी ने सभी प्रॉपर्टीज़ को इल्लीगल बताकर गवर्नमेंट के अधीन करवा दिया था और साथ ही अनुराधा का मर्डर भी राजवीर के नाम लगवा दिया था। राजवीर पर अपनी पुलिस की ड्यूटी में धोखा करने, एक लड़की का मर्डर करने और कई अवैध संपत्तियों को अपने पास रखने के जुर्म में अरहम की तरह ही सजा मिल चुकी थी। ये सारा प्लान उसके अंकल शमशेर सिंह जी का था, जिन्होंने जोया के साथ मिलकर इन सबको बर्बाद करने का रास्ता दिखाया था। जोया को उनका प्लान भा गया था। उसी के अकॉर्डिंग उसने सारा काम किया था और राजवीर को अपना मोहरा बनाया था। कहीं ना कहीं राजवीर के अंकल शमशेर सिंह जी अनुराधा के मर्डर का बदला राजवीर और अरमान से लेना चाहते थे और वो ले भी चुके थे, क्योंकि उसके अंकल शमशेर सिंह जी को इस बात का अफसोस था कि अनुराधा के बचपन में वो उसे नहीं बचा पाए थे। लेकिन अब उसके मरने के बाद भी अगर वो उसके कातिलों को सजा नहीं दिलवाते तो एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाते। और जब से अनुराधा का मर्डर हुआ था, हर रात उन्हें अनुराधा का खून से लथपथ चेहरा दिखाई दिया करता था। इसलिए अपनी नींद और सुकून को वापस पाने के लिए उन्होंने राजवीर सिंघानिया की बलि देने का फैसला कर लिया था और इसके लिए उन्होंने जोया के साथ मिलकर सारी सेटिंग कर ली थी। अपने अपने पद और शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद जोया और शमशेर सिंह जी ने राजवीर सिंघानिया और अरहम ठाकुर को पूरी जवानी जेल में काटने पर मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही गजाला जी के सामने उनके तीनों बच्चों की बर्बाद हुई जिंदगी का सच सामने आया तो वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। अरमान और अरहम की प्रॉपर्टी और दौलत को देखकर तो वो उनके साथ आई थीं, लेकिन अब वो केवल हाथ मलती हुई खाली हाथ रह गई थीं। अब गजाला जी के पास किसी ओल्ड एज होम में जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो मुंबई के एक ओल्ड एज होम में आसरा लेने चली गई थीं। मेहर ने अरमान को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया था क्योंकि वो अस्पताल का बिल अफोर्ड नहीं कर सकती थी और जोया के दिए हुए छोटे से घर में उसे ले आई थी। अरमान ने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया था, उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकला करते थे। मेहर अपने भाई की हालत देखकर दिन प्रतिदिन तिल तिल कर मरने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अपना सारा काम खत्म करने के बाद चांदनी और राजा को अच्छी तरह से पैसे और रुतबा देने के बाद जोया उनसे विदा लेकर अपनी मोहब्बत अबीर सिंह राठौर के शहर की ओर रवाना हो गई थी। आज जहां जोया को मर्दों से नफरत थी, वहीं अब एक ऐसा मर्द था जिसने उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था। जहां कुछ मर्दों ने जोया के दिल में सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा था और उसे बता दिया था कि कोई भी मर्द भरोसे के लायक नहीं है, वहीं अबीर सिंह राठौर ने जोया की जिंदगी में आकर उसे बताया था कि दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अकरम, रिया, अबीर सिंह राठौर, उनकी बेटी अरीबा सिंह राठौर अब एक खुशहाल परिवार की तरह साथ रहने लगे थे। जल्दी ही रिया ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दे दिया और सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे थे। उस रात अबीर और जोया एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। जोया ने अबीर को जी भरकर किस करने के बाद कहा, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ कि मेरी जिंदगी में आप आए हैं। आपने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को एकदम से बदल दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने सभी दुश्मनों को अच्छा खासा सबक सिखा पाई और उनसे बदला ले पाई। जोया की बात सुनकर अबीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन जोया बार बार थैंक यू बोले जा रही थी, इसलिए अबीर ने अपने होंठ जोया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। किस करने के बाद अबीर ने जोया से कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की या थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली नजर देखा था, उसी वक्त तुमसे मोहब्बत करने लगा था और उस वक्त ठान लिया था कि मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। लेकिन अपना बनाने के लिए पहले मुझे तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करना था और तुम्हारे अंदर हिम्मत भरनी थी। उस दिन के बाद से ही मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया था और जब मैंने तुम्हें अपना बना लिया, उसके बाद मैंने तुम्हें इस लायक बनाया था ताकि तुम अबीर सिंह राठौर जैसी बन सको, दूसरी अबीर सिंह राठौर। और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी मेरी फोटोकॉपी है, दूसरी अबीर सिंह राठौर है। ऐसा कहकर वे दोनों हंसने लगे और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए ऊपर वाले से दुआ करने लगे।